नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में देश के प्रत्येक नागरिक के कल्याण और विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा की जाएगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादे से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उन्होंने श्री मोदी को महान व्यक्ति और अपना अच्छा दोस्त बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया। राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस को उम्मीद है कि श्री मोदी द्विपक्षीय संबंधों के विकास में अपना योगदान जारी रखेंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक होगा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सुदृढ़ होने से उत्पन्न अवसरों और तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में दोनों देशों के बीच सहयोग की अनिवार्यता का उल्लेख किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में एक बौद्ध मंदिर और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूटान सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना के लिए वाराणसी में 2 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस पहल से बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने भूटान को ये भूमि मात्र 1 रूपये के नाम मात्र वार्षिक किराये पर 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।